हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आंशी इस वक्त एजेंसी ऑफिस की स्पेशल सेल में जस और अमन के साथ मौजूद थी। वो उसे विधिक के पास भेजने के लिए मेंटली ट्रेंड कर रहे थे, जिसमें शुरुआत कुछ नॉर्मल क्वेश्चन से हुई थी कि आंशी किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। अमन ने सबसे पहले उसे यही एडवाइस दी कि वो विधिक को किसी भी बात पर गुस्सा न दिलाए। गुस्सा न दिलाने के लिए जस ने उसे कहा कि वो विधिक को किसी बात के लिए मना न करे, तो आंशी ने तुरंत विधिक की सारी बातें मानने के लिए हाँ कह दी थी। इस पर जस ने उसे समझाया कि वो विधिक को सारी बातों के लिए भी हाँ नहीं कर सकती। कल को वो उसे अपने साथ बेडरूम में लेकर जाएगा और उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आंशी क्या करेगी? आंशी कुछ पल के लिए चुप हो गई तो जस ने कहा, जवाब दो अंश, अगर विधिक कल को तुम्हें अपने साथ बेड पर लेकर गया तो तुम क्या करोगी? ये पहली मुश्किल सिचुएशन होगी जो तुम्हें फेस करनी होगी। बताओ, ऐसी सिचुएशन में तुम उसे क्या जवाब दोगी? आंशी हैरानी में पड़ गई थी। उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि वो विधिक को अपने करीब आने से कैसे रोकेगी। तभी अमन ने सख्त आवाज में कहा, पीरियड्स, तुम उसे पीरियड्स का बहाना बनाओगी? कम ऑन ब्रो, ये बहाना ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, कुछ सॉलिड सोचना होगा। ये बहाना नहीं के 5-6 दिन के लिए काम आ सकता है, जस ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने आंशी की तरफ देखा और बोला, तुम्हें कोई ऐसी बीमारी है क्या जो लड़कियों में आम होती है? चलो, नहीं भी होगी तो हम हैंडल कर लेंगे। हम तुम्हें उस हिसाब से कुछ दवाइयाँ दे देंगे ताकि तुम उसे कोई भी गर्ल्स प्रॉब्लम बताकर खुद से करीब आने से रोक सकती हो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सिम्टम्स वही नजर आएंगे, इससे विधिक को शक नहीं होगा। उन दोनों की बातें सुनकर आंशी को थोड़ा अजीब फील हो रहा था, तो वो इधर उधर देखने लगी। अमन ने उसकी हालत समझते हुए तेज आवाज में कहा, इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा, हर सिचुएशन फेस करनी होगी। कल को वो तुम्हें किस करने के लिए तुम्हारे पास आएगा तो तुम, अमन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आंशी जोर से उस पर चिल्ला कर बोली, तुम दोनों यहाँ मुझे ट्रेनिंग दे रहे हो या डरा रहे हो? मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, मैं कर लूँगी उसे किस, पहले भी तो किया है। ओ रियली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, अमन ने उसे तिरछी निगाहों से घूर कर देखते हुए कहा। ब्रो, आपको जलन हो रही है, मुझे लगा इस मिशन के बाद आप दोनों अलग हो जाओगे और आप उसे लावण्या से शादी करोगे, जस ने बीच में बोला, तो अमन और आंशी दोनों एक साथ चिल्लाए, ओ जस, शट अप जस। आंशी ने फिर कुछ पल सोचा और फिर बोली, मैं उसे कह दूंगी कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं उसके साथ रहने जरूर आ गई हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उससे डर लगता है, ये बोलकर मैं उस टाइम ले लूंगी। रही बात तुम दोनों के बताए हुए बहाने की, तो दुनिया के डॉक्टर्स गायब नहीं हो गए हैं जो विधिक उन्हें नहीं बुला सकता। पीरियड्स का बहाना भी मैं ज्यादा से ज्यादा कर या 5 दिन के लिए बना सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। आंशी ने जिस हिसाब से जवाब दिया था उससे अमन थोड़ा निश्चित हो चुका था कि आंशी विधिक को संभाल लेगी। वैसे भी वो उसके साथ पहले भी टाइम बिता चुकी थी, इसलिए विधिक को कैसे संभालना है वो ये बेहतर जानती थी। मुझे फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए, ये उल्टे सीधे सवाल पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करो तुम दोनों, आंशी ने उन दोनों की तरफ देखकर आईज रोल करके कहा। फिजिकल ट्रेनिंग करके कौन सा उससे हाथापाई करनी है, बाकी ट्रेनिंग कर भी लोगी तो जीत नहीं पाओगी, तुम 2 दिन की ट्रेनिंग से उसे टक्कर नहीं दे पाओगी। अमन ने जस की बात पर सहमति जताते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेंटली स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है। चलो अब आगे बताओ, अगर विधिक ने तुम्हें धमकी दी कि वो तुम्हारे किसी अपने को नुकसान पहुंचाएगा अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी, तो तुम क्या करोगी? आंशी ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब में कहा, उसने वो सब छोड़ दिया होगा तो आई डोंट थिंक सो वो इस तरह की कोई धमकी देगा। फिर भी उसने ऐसा किया तो मैं बेपरवाह होने का दिखावा करूंगी, क्योंकि तुम तो हो ना उन सबकी सिक्योरिटी के लिए। अरे वाह अंश, तुम्हें ब्रो पर इतना यकीन है, देख रहा हूँ मैं, प्यार बढ़ रहा है आप दोनों में, जस ने हल्के तरीके से कहा। अमन और जस ने इसी तरह काफी टाइम तक ऐसे ही सवाल पूछे। उन्हें वहाँ सुबह से शाम हो गई थी, जहाँ वो आंशी का हर तरह से टेस्ट ले रहे थे। शाम को सेशन खत्म होने पर जस बोला, बस ब्रो, आई नीड अ ब्रेक, आपका पता नहीं लेकिन मुझे भूख लगी है। अमन ने जस को कुछ खाने के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। उसके जाते ही अमन ने आंशी की देखकर कहा, तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, मेरा मूड नहीं है, आंशी ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, अमन, हम घर कब जाएंगे? मुझे तुम्हारे साथ अकेले में अच्छा टाइम स्पेंड करना है, क्या पता फिर कब साथ आएंगे। अमन ने आंशी के हाथ को अपने हाथों में लिया और प्यार से सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, बस 1 महीने की बात होगी, उससे ज्यादा टाइम मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। अमन और आंशी एक दूसरे का हाथ पकड़े वहां बैठे थे, तभी मिस्टर दत्त वहां आए। उन्हें देखते ही अमन ने जल्दी से आंशी का हाथ छोड़ दिया था। मिस्टर दत्त धीमी आवाज में बोली, दिव्याना की डेड बॉडी दिल्ली पहुंच चुकी है। वो जिस फ्लैट में रहती थी वहां हमने फायर एक्सीडेंट करवा दिया। बॉडी काफी हद तक जल गई तो पहचान में नहीं आएगी और पोस्टमार्टम भी नहीं करवा पाएंगे। फिर लावण्या तो वहां है ही, वो सब संभाल लेगी। उन्होंने फिर आंशी की तरफ देखकर कहा, बेटा हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है, डायरेक्ट सब सामने आएगा तो काफी इश्यूज होंगे। आंशी ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। न चाहते हुए भी उसे इन सबसे सृष्टि की याद आ गई। वो उसकी फ्रेंड थी जिसकी मौत को विधिक ने कुछ इसी तरह अंजाम दिया था। अचानक सृष्टि की याद आने पर आंशी की आंखें नम होने लगी। उसने अपने मन में कहा, विधिक राणा, तुमने मुझे हर तरह से बर्बाद कर दिया था, अब मेरी बारी है और देखना हर बात का बदला सूद समेत लिया जाएगा। आंशी ने उनसे आगे कुछ नहीं कहा। मिस्टर दत्त ने फिर अमन से कहा, ये काफी थक गई होगी, तुम लोग सुबह से बैठे हुए हो, ऐसा करना आगे की ट्रेनिंग इसे तुम घर पर करवा देना, चेहरे से भी थोड़ी परेशान लग रही है, चाहे तो दोनों घर जा सकते हो। अमन ने कोई भी डिसीजन लेने से पहले आंशी की तरफ देखा तो जवाब में आंशी ने ना में सिर हिला दिया। वो किसी तरह खुद को कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा। आंशी के बिहाफ में जवाब देते हुए अमन ने कहा, थोड़ी देर और रुकते हैं सर। मिस्टर दत्त ने अमन की बात पर हामी भरी और वहां से चले गए। उनके जाते ही अमन ने आंशी की तरफ देखकर कहा, इस तरह परेशान रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, चलो बताओ क्या खाना है, सुबह ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं किया था और अब भी शाम होने को आ गई है। मुझे भूख नहीं है अमन, तुम मेरे लिए एक कप चाय मंगवा दो, वही काफी होगा, आंशी ने बुझी हुई आवाज में जवाब दिया। अमन ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से आंशी के लिए चाय लेने के लिए चला गया। उसके जाते ही आंशी ने अपना सिर बेंच पर तक रख दिया था, वो काफी थकी हुई थी। आंशी ने बेंच पर सिर रखने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सोचते हुए बोली, मुझे ट्रेनिंग करने का ज्यादा टाइम ना मिला हो, लेकिन विधिक राणा, तुम्हें मैं हरा कर रहूंगी। जिस प्यार के दम पर तुमने मेरी जिंदगी पर बर्बाद की, अब तुम्हारा वही प्यार तुम्हें बर्बाद करेगा। आंशी वहां बैठी सोच रही थी तभी अमन उसके लिए पानी और चाय लेकर आया। आंशी ने चाय पी। चाय पीने के बाद आंशी को थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा था। वो और अमन बैठे ही थे कि तभी जस वहां आ गया और फिर से उनका वही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका था।
रात के लगभग 9 बजे के करीब अमन और आंशी फ्री हुए। घर आकर अमन ने आंशी को फिर से डिनर के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। आंशी का उतरा हुआ चेहरा देखकर अमन भी परेशान हो गया था और वो उसे सीधे अपने घर लेकर आ गया। घर पर आते ही अमन ने आंशी से कहा, देखो मैं तुम्हारा कोई बहाने नहीं सुनने वाला, तुम चुपचाप बैठकर खाना खाने वाली हो, इस तरह मुंह लटकाकर रखने से कुछ नहीं होगा, अगर नहीं जाना है तो सीधा मुंह पर कहो। अमन आंशी को डांटना लगा था तभी आंशी उसके पास आई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोले, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे भूख नहीं है सच में और मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं नहीं जानती हमारा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन फिलहाल मैं हर एक लम्हे को तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अमन, ज्यादा मत सोचो, हम हमेशा साथ रहेंगे, अब बताओ तुम्हें खाने में क्या चाहिए, अमन ने पूछा। आंशी कुछ पल सोचते हुए से बोली, तुम, आई वॉन्ट यू अमन कपूर, बोलते हुए आंशी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अमन उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ रहा था। अमन ने आंशी को कमर से पकड़ा, उन दोनों के सिर जुड़े हुए थे और नाक आपस में टच हो रहे थे। फिर अमन ने जवाब में कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात मानकर खाना खाना होगा, पूरे दिन से तुम ऐसे ही घूम रही हो। आंशी ने अमन की बात पर हामी भरी। डिनर करने के बाद दोनों फ्रेश हुए और फिर बेड पर थे। आंशी नहीं जानती थी कि कल क्या होगा, उसे आगे अमन का चेहरा देखने को मिलेगा भी या नहीं, इसलिए सब कुछ भूलकर वो अमन के साथ अपनी दुनिया में खोई हुई थी। वो उसके साथ कुछ आखिरी लम्हों को खुलकर जीना चाहती थी। यही वजह थी कि आंशी अमन से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती थी।